समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, आपके मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक के साथ मैं हूं कनकलता। देश में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तैयार किया है। इसका उद्देश्य देशभर में एक प्रभावी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क विकसित करना, वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए व्यापक प्रबंधन योजना बनाना है। देश में सबसे खराब हवा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है और यह विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। प्रदूषण का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम देश के लोगों के लिए स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। वायु प्रदूषण से संबंधित तमाम खबरों के बीच ये आशा की एक किरण है। आज हम पब्लिक स्पीक में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ सी के वार्ष्णेय और डॉ दीपांकर साहा। स्वागत है। श्रोताओं, आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। नंबर है 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इस नंबर से पहले 011 डायल करना न भूलें। आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNewsAlerts पर भी #AskEIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल कर सकते हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि वायु प्रदूषण रोकने में किन मोर्चों पर हमें सफलता मिली है और कहां चुनौतियां बाकी हैं?
बहुत अच्छी सवाल। हमारे जो नेशनल एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है, उसमें अगर हम अच्छे से विचार करें और उसको डाटा को हम लोग देखें, विश्लेषण करें, विश्लेषण में पता चलता है कि हमारा जो गैशियस जो पोल्यूटेंट्स है, 6 गैशियस पोल्यूटेंट्स आर देयर इन आवर स्टैंडर्ड, उसमें वी आर एबल टू मेंटेन द स्टैंडर्ड एंड इट इज पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। SO2 हमारे वातावरण में है ही नहीं, वी हैव कंट्रोल्ड इट। लेड जो खतरनाक एक एंटी नॉकिंग हेवी मेटल हम लोग डालते थे गैसोलीन में, उसमें भी हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। बेंजीन जो एंटी नॉकिंग एलिमेंट को हम लोग डालते हैं, उनको भी हम लोग धीरे धीरे कंट्रोल करके, इवन दिल्ली जहां पे सबसे अधिक संख्या में वाहन है वहां भी बेंजीन का कोई प्रॉब्लम है नहीं। CO को हम लोगों ने कंट्रोल में रख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर छोड़ के हमारे देश में ओजोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉक्स की मात्रा में थोड़ा सा हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर है, तो गैशियस में हमारे देश में हम लोग बहुत ही सफलता से अग्रसित हो रहे हैं। लेकिन हमारा ये ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में पार्टिकुलेट में हम लोग काबू में नहीं रख पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हम लोग रेन स्टर्ब्ड, हमारे यहाँ अच्छे से रेन नहीं हो पाता है, टॉप सॉइल लूज रहता है एंड एलुवियल सॉइल है तो एलुवियल ऑल्सो कीप्स ऑन फ्लोटिंग ऑन द एयर एंड उसको हम लोगों ने 15 साल में डाटा में दिल्ली का भी एनालिसिस करके देखा कि हम लोग उसको कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग पिछले साल ग्रेडेड एक्शन प्लान लॉन्च किया था एंड उसका मूल जो
दिल्ली सरकार की ये
नहीं सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से जो
किया, दिल्ली में लागू
किया गया था क्योंकि दिल्ली हमारे डस्ट के मामले में सबसे ऊपर रहता है।
121 टन डस्ट रोज
रोज हम लोग का, हमारा जितने भी कूड़ा करकट जलते रहते हैं, हमारे जी डंप साइट है वो जलते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलते रहते हैं, रोड डस्ट जो है वो घूमते रहते हैं। इसके अलावा वाहन से भी कुछ प्रदूषण होता रहता है, इंडस्ट्री का भी कुछ प्रदूषण है, तो उसके वजह से हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये धूल मिट्टी को कम करने के लिए जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर जो कैंपेन चला रहे हैं उसी के ऊपर अटैक मेनली हमारा है।
ये जो नया कार्यक्रम तैयार किया सरकार ने उसमें इस बारे में क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारे एक श्रोता इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पर, धीरज कुमार दिल्ली से। हेलो
जी मैम, नमस्ते। मेरा नाम धीरज कुमार है
जी।
मैं मैम ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि प्रदूषण के ऊपर जो है तभी रोक लग सकती है सरकार, जिसने जो वाहन चल रही है ये डीजल और पेट्रोल की जितनी, इनको पहले रोक लगानी चाहिए सरकार को। और दिन में मैम ट्रक भी चलती है धुएं वाली, इनमें भी सरकार को कुछ ध्यान देनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा मैं तो यही कहना चाहूंगा मैम, ज्यादा से ज्यादा पौधे वगैरह लगाने की कोशिश करें।
देखिए ये जो आपने बात बताई ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ पे 10 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां हैं और जिसकी वजह से काफी प्रदूषण बढ़ता है, ट्रक भी हैं जो बाहर से आते हैं
और, से सबसे ज्यादा।
और दूसरी बात यह है कि जो धुआं निकलने वाली गाड़ियां हैं या दो पहिए वाहन हैं तो उन सबसे भी प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। इसको रोकथाम के लिए हमारे पास में कई कदम सरकार ने उठाए हैं, जैसे कि पॉल्यूशन चेक है, और दूसरी बात यह है कि वो अपने गाड़ी को ठीक से रखें, चुस्त रखें, ट्यून्ड रखें। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारे सड़कों पे इतनी भीड़ रहती है कि गाड़ी हमेशा एक फर्स्ट गियर में ही चलती है या फिर काफी देर खड़ी रहती है, तो इसकी वजह से भी प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए एक और समस्या है कि सड़क के ऊपर वाहनों का जो पार्किंग होती है वो भी गलत तरीके से होती है, चाहे वो रिक्शे हों या तिपहिये गाड़ियां हों या दोपहिया गाड़ियां हों या कारें हों, वो इस तरीके से रहती हैं कि सड़क का जो पूरा स्थान है उसको काफी घेर लेती हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों के चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो इन सब चीजों को देखने के साथ साथ हमारे यहाँ जो ट्रैफिक है वो मिक्स ट्रैफिक है, कभी रिक्शा है तो कभी साइकिल है तो कभी कोई हाथ गाड़ी है, तो इसकी वजह से गाड़ियां तेजी से चल नहीं पाती हैं और भीड़ बढ़ जाती है। तो जब भीड़ बढ़ेगी और गाड़ियां धीरे चलेंगी तो प्रदूषण की मात्रा अपने आप स्वतः बढ़ जाती है। पॉल्यूशन चेक होता है लेकिन उसकी कार्रवाई पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से नहीं हो पाती है, कुछ गाड़ियां उसको टालती रहती हैं, तो इसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी सड़कों के ऊपर सफाई रहनी चाहिए ताकि गाड़ी चलने से जो धूल बराबर उड़ती रहती है उसके अंदर कमी आए। और दूसरी बात यह है कि अभी कई सारी चीजें करने की सरकार कोशिश में है। एक तो यह है कि बड़ी जल्दी 2020 तक
BS6
आने वाला है तो जिससे क्या होगा कि जो ईंधन की जो गुणवत्ता है वो और बढ़िया रहेगी और गाड़ियों में भी उसके इस्तेमाल करने की जो क्षमता है वो काफी अच्छी रहेगी और उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी।
अप्रैल से इसे लागू किया जाना है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल सवाल लेते हैं लालू नामदेव का, छतरपुर मध्य प्रदेश से। हेलो
हेलो कनक लता जी नमस्कार।
नमस्कार नामदेव जी, सवाल पूछिए।
मैं लालू नामदेव बोल रहा हूँ, ग्राम पोस्ट धनवा तहसील बड़ा मलाया जिला छतरपुर से
जी।
मैम मेरे दो सवाल थे मैम। मैम मेरा पहला सवाल तो ये था कि जैसे जो जो राजधानी दिल्ली है हमारी
जी,
जो वहाँ जैसे जो DDC की बस चलती है वो गैस वाली, तो क्या ये जो और राज्य है क्या वो अपना सकते क्या ये जो DDC वाली बस है इस तरह की बस है अपना का, इससे भी क्या प्रदूषण?
CNG बसों की आप बात कर रहे हैं?
हाँ ऑफकोर्स, देखिए कोई भी ईंधन भी जलेगा, एनी टाइप ऑफ फ्यूल व्हेन इट इज बर्न इट विल क्रिएट समथिंग पोल्यूशन, तो उसमें CNG जो बसों से है निकलने वाले सबसे NO2 NOx निकलते रहते हैं। तो हाई प्रेशर कम्बशन में हमारा जो ऑफ गैस है जो नाइट्रोजन वो जल जाता है ऑक्सीजन के साथ और वो NO2 NOx में कन्वर्ट होकर निकल जाते हैं। CNG में सबसे ये है कि अच्छी चीज है कि दूसरे और कोई गैसेस नहीं निकलते हैं, पार्टिकुलेट में की मात्रा में बहुत ही कम होता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत कम जनरेट होते हैं इनसे।
इनका ये कहना है कि दूसरे शहरों में भी ऐसी बसें नहीं चलाई जा सकती जैसे दिल्ली में चलती है CNG बसें?
क्यों नहीं जा चला, हमें तो क्लीन फ्यूल की तरफ जाना ही चाहिए। हमारे पास रोड मैप होना चाहिए, सब शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए।
और अभी जो एक प्लान बनाया गया है 100 शहरों के लिए डेडिकेटेड प्लान है कि वहां एयर पोल्यूशन कम करना है, उसमें इन बातों की चर्चा की गई है?
ये हम लोग हर शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, हर शहर की क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या सब की क्या क्या जरूरत है, उसको देख के हम लोग ठोस एक्शन प्लान तैयार करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। और हमारा एक टारगेट है 2018 तक हम 30-35% प्रदूषण को कम करेंगे ये शहरों में। अगले साल हम लोग 50% तक प्रदूषण कम करने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे जरूरत जो है हमें समझना पड़ेगा, एयर हमारा एक संशोधन है, संसाधन है, हमारा रिसोर्स है, क्योंकि हमें सबका सहयोग चाहिए तभी ये संभव हो पाएगा।
हमारे साथ अब हैं डॉक्टर पंकज कुमार दिल्ली से। हेलो।
हेलो
जी, पंकज जी बोलिए।
जी, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था, दिल्ली में व्हीकुलर पोल्यूशन तो है ही, उसके साथ साथ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं, जो अपनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, तो दिल्ली सरकार ने इनको खुली छूट देके रखी हुई है, उसकी वजह से भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो कोई केंद्र सरकार के पास या फिर कोर्ट के थ्रू इस पर भी रोक लगनी चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन थोड़ा कम हो।
देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन है और जो निर्माण कार्य होता है उससे पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती है, और इसके साथ साथ जो पोल्यूशन जो ईंट भट्टों से होता है, जिसकी वजह से जो दिल्ली के चारों तरफ हैं, तो उससे भी प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो इस सब को रोकने के लिए जो हमारी तंत्र है वो इतना लचर है और इतना कमजोर है कि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने में उसकी क्षमता बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से ये काम होता रहता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कंस्ट्रक्शन और जो ईंटों के भट्टे और उससे लगे हुए जितने भी काम हैं, जैसे कि रोड़ी को तोड़ना और स्टोन क्रशिंग करना, इन सब की वजह से प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब खुदाई होती है तो खुली मिट्टी को, लूज मिट्टी को छोड़ दिया जाता है जो कि बहती रहती है। उसके बारे में भी ये एक निर्देश है कि सारे लोग ऐसी मिट्टी को और ऐसे स्थान को जहां निर्माण हो रहा है उसको कवर करके रखें, ताकि प्रदूषण की मात्रा ज्यादा बढ़े नहीं और हवा के साथ प्रदूषण बहे नहीं। लेकिन इन सब कार्रवाई के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है,
हमारी भी जिम्मेदारी,
क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक सिर्फ पुलिसिंग करने से बात नहीं बनेगी।
नीति बना
और तो हमें दो चीजें करनी है, एक तो हमें अपनी पुलिसिंग और अपनी निगाहदाश्ती में अंदर काफी तेजी लानी है, चुस्ती लानी है, और दूसरे हर नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना है।
सत्येंद्र दहिया है दिल्ली से ही हमारे साथ। हेलो सत्येंद्र जी।
हाँ जी मैडम, नमस्कार।
नमस्कार।
हाँ सर, आपको भी नमस्कार।
नमस्कार।
सर, मेरा ये सवाल है कि जैसे हम दिल्ली के बीच में तो हम बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, जैसे डस्ट क्लीनिंग करते हैं, वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं आउटर दिल्ली की, तो कॉलोनी में हम देखते हैं कि मतलब पानी सप्लाई करने के नाम पे रोड खोद के रख देते हैं, उनको 6-6, 8-8 महीने हो जाते हैं। कॉलोनी में हर खंबे के पास में स्पीड ब्रेकर बन जाता है हर 10 मीटर्स के बाद, उसका कोई रिमूवल नहीं होता है डिस्पाइट रिपोर्टिंग टू द अथॉरिटीज। कॉलोनी में गेट्स लगा दिए जाते हैं, पब्लिक को घूम के जाना पड़ता है, जबकि वो पब्लिक रोड होता है। वो आदमी कहता है मेरे यहाँ बहुत सारे प्लॉट हैं इसलिए मैंने लगा दिया, वो रिपोर्ट भी किया था लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ।
हाँ, तो आपका सत्येंद्र जी एकदम बहुत सुंदर सवाल आपने किया, लेकिन ये है कि हम लोग का अंदर कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का अभाव तो है ही, और साथ में पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा था ठीक से। इसीलिए हम लोगों ने जो क्लीन एयर कैंपेन फॉर दिल्ली लागू किया है, ताकि हम लोगों को जो एयर का जो एक रिसोर्स है हमारा, एयर को ठीक ठाक हमें रखना है फॉर आवर पर्पस ओनली, वो कर रहे हैं कि लोग हमारे जो रेवोल्यूशन, हमारा जो पॉलिटिकल व्हील के साथ मिलकर हम लोग इसको ठीक तरह से कर पाए और प्रदूषण से हमें राहत मिले। और जो गड्ढा खोद के रख देते हैं, देखिए हमें नागरिक है, हम लोग सब नागरिक हैं, सब मिलके अगर आवाज उठाए उसके ऊपर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो मेरे हिसाब से ये आप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो CCR है वहां पे आप अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं।
नंबर इन्हें बता दें।
ये हमारे समीर ऐप जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी किया है, उसमें आप अपना कंप्लेन खुद भी लॉन्च कर सकते हैं। उस पे आपका कंप्लेन का फेट क्या हो रहा है, किसके पास वो गया है, क्या कार्रवाई हो रहा है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। आप अपने लोकल एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। सो नॉट ओनली फॉर दिल्ली, फॉर एंटायर कंट्री आप देख सकते हैं और अपना सुझाव भी उसमें दे सकते हैं।
इसमें एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि हमारी सरकार की और जो जितने महकमे हैं उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको एयर पोल्यूशन के बारे में सचेत किया जाए, ताकि इस तरीके से जो सड़क पे निर्माण कार्य होता है या रिपेयर का काम होता है तो उसमें इस तरह की लापरवाही न की जाए, क्योंकि शिकायत करना और फिर शिकायत के बारे में देखना ये तो फिर दूर की बात हो गई। टू बिगिन विद उसको नहीं छोड़ना चाहिए, और इस तरीके से जो सारे डिपार्टमेंट महकमे हैं जिनका पोल्यूशन से डायरेक्टली संबंध है या नहीं है, उन सबको हमें पोल्यूशन के बारे में सचेत करना है और समझाना है कि किस तरीके से कार्रवाई की जाए।
हम सुनने वालों को बता दें कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है जिसका नंबर है 9717593501। एक और नंबर है 9717593574। आप इस पर अपने जो है कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से इस पर कार्रवाई की जाएगी आगे। हमारे साथ अब हैं कृष्णा कुमार दिल्ली से। हेलो
हेलो,
हाँ कृष्णा जी बोलिए।
नमस्ते मैम।
नमस्ते, हम आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए।
हम जानना चाहते हैं आज सरकार इतने ट्रैफिक नियम निकाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नियमों का अच्छी तरह से पालन नहीं करते हैं और ट्रैफिक लगने के बाद अपने गाड़ी को बंद नहीं करते हैं, जिसके कारण वायुमंडल में CO2 गैस फैलती है और लोग बीमार पड़ते हैं। उनके लिए सरकार को एक ऐसा नियम निकालना चाहिए वो आवारा लुटेरों पर भी लगाम लग सके।
नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि नियम ऐसा होना चाहिए, और इसमें हमको जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और जहां पर लाइसेंस दिया जाता है और इन सब चीजों की निगरानी रखी जाती है वहां पर इन सब का हिदायत देनी चाहिए, और हमको एक पब्लिक कैंपेन भी चालू करना चाहिए जिससे कि लोगों को हर वक्त याद दिलाया जा सके उनकी अपनी जिम्मेदारी का, और उनको एहसास कराया जा सके कि इस सब करने में उनका अपना ही फायदा है, क्योंकि जब सांस आप लेते हैं तो सबसे पहले तो आप ही को उसका प्रभाव पड़ता है, दूसरे के ऊपर तो उसके बाद जाता है। तो इन सब चीजों को हमें लोगों को समझाना है ताकि लोगों को इसके बारे में अच्छी तरीके से पता चले कि किस तरीके से वो स्वयं अपना ही नुकसान करते हैं अगर वो प्रदूषण के कायदे को नहीं समझते हैं और प्रदूषण रोकने के रोकथाम में पूरा पूरा सहयोग नहीं देते हैं।
मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। अभी एक स्टडी हुआ था उसमें 40,000 करोड़ रुपया हम लोग ये ईंधन को ऐसी तरह से जला के खराब कर देते हैं। तो सरकार की तरफ से एक प्रचेष्टा है कि ये जो पैसा वायुमंडल को जो प्रदूषित कर रहे हैं ये पैसा को भी हम वापस ला सके, और ये पब्लिक पानी है सरकार, आपके पैसा ही है जो वाहनों को ठीक ठाक ना चलाने की वजह से और ट्रैफिक सिग्नल में गाड़ियों को बंद ना करने से जितने हमारे नुकसान हो रहा है, सभी का नुकसान हो रहा है, उसको बचाना भी हमारा एक काम है। तो सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश है, नियमावली है, ग्राउंड लेवल में हमें काम करना पड़ेगा। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेस है, जहां भी हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल करना बहुत आवश्यकता है।
हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सुपर क्लीन फ्यूल BS6 की, जिसे सरकार अप्रैल से लागू करना चाहती है, लेकिन इसे आपको क्या लगता है जो डेडलाइन तय की गई है उसे हासिल करने के लिए बाधाएं हैं उसके रास्ते में?
नहीं, चैलेंज तो है, क्योंकि इसमें जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं उनको उसी तरीके से कार के अंदर और कार की टेक्नोलॉजी में प्रावधान करना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि सारे भारतवर्ष में इस सबको उपलब्ध कराना भी एक चुनौती है, और इन सबको देखते हुए मैं समझता हूं सरकार काफी दृढ़ निश्चित है कि वो जरूर ही BS6 लाएगी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि आजकल हमारे यहां BS4 चल रहा है, तो इसकी पांचवीं जो एक PS5 की जो स्टेज है उसको हम जंप करके स्किप करके सीधे और ये 2030 में आना था, तो उसको 2030 में आना था, तो उसको हमने प्री डेट कर दिया है, अब आएगा 2020 के अंदर। तो 10 साल इसको प्रीडेट किया है वो इसी वजह से, ताकि पोल्यूशन के ऊपर जो चिंताएं हैं वो कम से कम हो सके। तो इससे जो ईंधन मिलेगा उसकी जो गुणवत्ता होगी बहुत अच्छी होगी, और उससे पोल्यूशन की मात्रा भी कम निकलेगी। और दूसरी बात यह है कि गाड़ियों के अंदर भी फिर इनके चलने से थोड़ी सी मात्रा में कमी आएगी पोल्यूशन के यहां। और दूसरी बात यह है कि जो नई गाड़ियां आएंगी उनकी एनर्जी इफिशियंसी भी बेटर होगी, इसके माने ये हुए कम तेल में थोड़ा ज्यादा भी वो चलेंगी। तो इन सब को देखते हुए हमें लगता है कि BS6 का लाना और उसको कार्यान्वित करना एक बहुत ही कारगर स्टेप है, और इसके करने में सरकार भी बहुत मैं समझता हूं कि अपना कार्य कर रही है, रिफाइनरीज भी अपना पूरा कार्य कर रही हैं, लेकिन चैलेंज तो है, क्योंकि सारे देश में ऐसा ईंधन डिस्ट्रीब्यूट करना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है।
मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, ये व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑयल रिफाइनरीज मिलके आज तक के जितने भी सरकार की जितने भी स्टेजेस आए, सो BS2 हो, 3 हो, 4 हो, नाउ 6, दे आर वर्किंग वेरी इन ए कोऑर्डिनेटेड मैटर एंड दे शुड बी अप्रिशिएटेड व्हाट एवर द स्पेसिफिकेशन वी हैव प्रिस्क्राइब्ड। और ऑयल कंपनीज दे आर एबल टू डिलीवर, द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स दे एबल टू कम्प्लाई द इंजीनियरिंग डिजाइन। ये बहुत ही एक अप्रिशिएटिव टेस्ट है, अच्छा काम किया, सल्फर को रिड्यूस किया, लेड को रिड्यूस किया, बेंजीन को रिड्यूस किया, बहुत अच्छे कदम है, उन लोग अप्रिशिएट करना चाहिए।
हमारे जिन श्रोताओं ने अभी भी स्टेशन ट्यून किया है उनके लिए हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, हम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं पर्यावरणविद डॉ CK वार्ष्णेय और डॉ दीपांकर साहा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। एक और नंबर है 011-233-1-4444। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेतन प्रकाश जोधपुर से। हेलो
जी, नमस्कार।
नमस्कार चेतन जी,
ओशिया जोधपुर से बोल रहा हूँ मैं।
हेलो,
हाँ जोधपुर से चेतन प्रकाश बोल रहा हूँ।
हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं चेतन जी?
अब मैं जैसे हमारे जोधपुर नगर में है, उसमें तो जो कचरा है सुपर कचरा नीले कचरा, उसके लिए तो नगर निगम ने गाड़ियां कर दी है कचरा ले जाने लाने के लिए, लेकिन गांव में जो छोटे छोटे कस्बे हैं तो उसमें सरकार की कुछ मतलब उसमें जो कचरा होता है वो लोग जला देते हैं और हमारी वायु है दूषित हो जाती है, तो उसके लिए सरकार आगे आने वाले समय में क्या करेगी?
देखिए, अगर चेतन जी मैंने आपको ठीक से सुना है तो आप ये पूछ रहे हैं कि गांव में जो लोग शाम के वक्त में जलाते हैं तो उसकी वजह से धुआं फैल जाता है, तो उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? आपने सुना होगा कि सरकार की एक योजना है उज्ज्वला योजना, जिसमें कि लोगों को घर में जलाने के लिए गैस का प्रावधान, गैस कनेक्शन का प्रावधान किया जा रहा है। तो इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इसकी वजह से जो बायोमास है, जो हम जलाते हैं ईंधन है, उसके जलने से जो धुआं होता है उसके अंदर कमी आएगी। और दूसरी बात यह है कि कई जगह बायोगैस का भी इस्तेमाल लोगों में प्रचलन बढ़ा है। और तीसरी बात है कि अब तो हमारे पास में सूर्य की शक्ति भी है, जिसकी वजह से हम सौर ऊर्जा से भी खाना बना सकते हैं और कई सारे काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ईंधन जलाने में सुविधा रहेगी। और मैं समझता हूं कि ये जो आपने बात उठाई है बिल्कुल ठीक है कि शाम के वक्त में जब घरों के चूल्हे जलते हैं तो बायोमास जलता है और उपले जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से धुआं नीचे ही भरा रहता है। तो ये भी एक आवश्यकता है कि किसी तरीके, और ये बड़ा सेहत के लिए बड़ा खराब भी होता है, क्योंकि इससे आंखों के अंदर, फेफड़ों के अंदर भी काफी तकलीफ होती है। तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें जन आंदोलन की जरूरत है, हर आदमी को सचेत होने की जरूरत है, और आप जैसे लोगों की माध्यम से इस बात को फैलाया भी जा सकता है कि भाई इस तरीके से न करके हम स्वच्छ फ्यूल का या सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करें, जिससे कि धुआं कम से कम सर्दियों में रहे और नीचे न अटके।
वार्ष्णेय जी, दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था पिछले दिनों कि जो RWA हैं वो अपने गार्ड को हीटर उपलब्ध कराएं, ताकि सर्दियों की रात में वो लकड़ी और पत्ती को ना जलाएं।
बिल्कुल, बिल्कुल।
तो ये भी बहुत अच्छा
इसी कारण से ये इसी उद्देश्य का यही है कि ताकि वो धुआं न रहे, क्योंकि सर्दियों में देखिए हवा काफी ठंडी होती है, भारी होती है, तो उसमें ये धुआं वगैरह नीचे ही जमा रह जाता है। जी हाँ, और वो हमारी सांस लेने के स्तर पर ही रहता है, जिसकी वजह से काफी तकलीफ होती है।
अगला सवाल महेश चौहान का है, दिल्ली से।
नमस्ते मैम।
नमस्ते महेश जी।
मैम मेरा सवाल ये है कि भारत सरकार वायु गुणवत्ता के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, वायु गुणवत्ता के लिए।
इसलिए ये कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके हम चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, और इसके अलावा और भी कार्यक्रम दिल्ली में चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा और जो हमने अभी बात की थी क्लीन एयर फॉर दिल्ली जो चलाया जा रहा है, इसकी तर्ज पर अन्य राज्यों में भी ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। दीपांकर जी ज्यादा बताएंगे।
अच्छा, वायु प्रदूषण में हम लोग का मॉनिटरिंग स्टेशन लगाना, गुणवत्ता हमारा पास अपना स्टैंडर्ड है एंड बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है, एंड इट इज टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हम लोगों ने 2009 में रखा है पब्लिक के सामने। और उसमें सबसे मुख्य बात जो हम लोगों ने कहा है यूनिफॉर्म एयर क्वालिटी फॉर ऑल, हम लोगों ने इंडस्ट्री या रेजिडेंशियल या कमर्शियल एरिया के लिए अलग अलग नहीं रखा है, ये बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है। और इसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए देश में करीब 700 स्टेशन हमारा मैनुअल स्टेशन चलते रहते हैं, 100 हमारे पास ऑटोमेटिक स्टेशन है। और ऑटोमेटिक स्टेशन का एक फायदा ये है कि घंटे में हम लोग AQI देख सकते हैं, और AQI के साथ जो है एडवाइजरी, हेल्थ एडवाइजरी हम देख सकते हैं कि उस AQI के साथ करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना चाहिए, वो भी हमारे पास मौजूद है। क्योंकि हम लोगों का जो मुख्य कारण है पब्लिक का पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोग्राम, पब्लिक छोड़ के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सब इसके हमारे जो प्रोग्राम है, हमारे जो ऑब्जेक्ट है, हमारे जो सब्जेक्ट है, इसके साथ जुड़े रहें। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कूड़ा कैसे वायु प्रदूषण की भाग बन सकता है। कूड़ा इज ए सॉलिड वेस्ट, इट शुड बी हैंडल्ड ऑन इट्स ओन वे। कंस्ट्रक्शन इट इज अगेन ए सॉलिड वेस्ट मैटर, बट इट इज बिकमिंग ए पार्ट ऑफ आवर एयर पोल्यूशन। रोड डस्ट अगेन इट्स ए सॉलिड वेस्ट, बट इट इज बिकमिंग ए पार्ट ऑफ आवर एयर पोल्यूशन। तो ये जो चीज है, इस चीज को हम जब तक ग्राउंड लेवल में, जब तक हम खुद पार्टिसिपेट करके, लोगों को इन्वॉल्व करके, म्युनिसिपैलिटी के साथ, डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, नगर निगम के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ, सबके मिलकर नहीं काम करेंगे, तो हमारा जो टारगेट है टू अचीव द एयर क्वालिटी गोल, दैट इज आवर स्टैंडर्ड, उस पे हम लोग लेट कर रहे हैं। हम लोग बड़े जल्दी जल्दी उसको अचीव कर लेना चाहिए।
प्रतीक गुप्ता हैं। हेलो।
हेलो।
हाँ प्रतीक जी।
गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग।
मेरे दो क्वेश्चन है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे पॉलिसी तो अच्छी बनती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा ही प्रॉब्लम होती है। सुप्रीम कोर्ट की रिपीटेड गाइडलाइन के बाद भी न तो सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कुछ करती है, न दिल्ली गवर्नमेंट कुछ करती है, न म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो दिल्ली का एमसीडी है वो कोई इसमें सॉल्यूशन करती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे में 1986 का बना हुआ है, उसके बाद आज 32 ईयर्स के बाद भी हमारे पास एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रखा है, और हमेशा ही प्रिवेंटिव मेजर के बजाय सिक्योरिटी मेजर में गवर्नमेंट जाती है। अब जो पीछे दिल्ली में भी क्राइसिस हुआ था, तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद की, इवन और लाने का बात हुआ, वाटर स्ट्रीम की बात हुआ, लेकिन जब इतनी अभी जो वेदर फोरकास्टिंग इतना अच्छा हो रखा, तो हमें पता है कि एयर कंजेस्टेड होने वाली है, पॉल्यूशन होने वाला है, तो उससे तीन दिन चार दिन पहले हम ये मेजर स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते।
प्रतीक, आपने जो कहा है और जो आपने सवाल उठाया है, मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा है, और यही वास्तविकता है कि हमारे यहां पर जितने भी हम नियम बनाते हैं या जो हम रूल बनाते हैं, नियम बनाते हैं, उनका ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। और इसका एक मुख्य कारण है कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक बड़ी भारी टास्क फोर्स, और मैं समझता हूं वर्क फोर्स की जरूरत है, जिसकी कमी रहती है। अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ही देखें तो उनके अंदर जितने टेक्निकल लोग हैं वो बहुत हैंडफुल हैं, और काम है बहुत भारी। तो इस सब की वजह से हमारे पास में धनराशि की भी कमी रहती है, और दूसरी बात यह है कि जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज हैं वो भी थोड़ी सी सेंसिटिविटी उनकी और हमको बढ़ानी है, ताकि वो इसके बारे में और जागरूक रहें। तो यही सब कारण हैं जिसकी वजह से कि नियम बनने के बावजूद भी प्रदूषण की समस्या हमारे यहां बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे यहां इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, तो यही कारण है कि 1986 का जो ईपी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके रहते हुए भी हमारे यहां प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। एक बात मैं और बता दूं कि प्रदूषण के दो मुख्य पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि जब प्रदूषण कितना है और बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में तो हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन वास्तव में प्रदूषण होने से कैसे रोका जाए उसके बारे में हमारे पास में न तो कोई सॉलिड नीति है और न उसके ऊपर हमने बहुत गहरे तरीके से कार्रवाई की है। ये जो डिग्रेडेड रिस्पॉन्स है, ये सिर्फ वो है कि अगर प्रदूषण हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ये प्रदूषण टू बिगिन विद हो ही नहीं, उसके बारे में कैसे किया जाए, तो इसमें हमको ये देखना है कि हमको एक लाइफ साइकिल एनालिसिस करनी है अपने इंडस्ट्री की और अपने हर कार की, जिससे कि हमें पता चले कहां कहां प्रदूषण होता है और किस तरीके से सोर्स, उसके बारे में एक स्टडी अब शुरू की गई है कि सोर्स अपोर्शनमेंट और कौन कौन से सोर्सेज हैं और किस तरीके से वो सीजन के साथ बदलते रहते हैं, तो इन सब का जब आंकड़ा हमारे पास आएगा, लेकिन इसको पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी देर आए दुरुस्त आए, आई थिंक ये स्टडी एक शुरू की गई है और बहुत जल्दी हमारे पास में इसके उत्तर आएंगे और नतीजा निकलेगा, उसके बाद में हम थोड़े और इसको रोकने में सशक्त होंगे।
जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन की हमने बात की है, उसका यह है कि जब रोक लगाई जाती है कूड़ा करकट जलाने पर और मशीन द्वारा सड़कों की सफाई की जानी है, पार्किंग शुल्क में 4 गुना वृद्धि करनी है, लेकिन जब इन नियमों को तोड़ा जाता है तो इसके दंड का कोई प्रावधान नहीं है।
इसके दंड का कोई प्रावधान नहीं, और दूसरी बात यह है कि इसको कितनी जल्दी हम लागू कर पाते हैं, जैसे आज प्रदूषण स्तर बढ़ गया तो उसको लागू करने में कितनी देर लगती है, तो उसके बारे में भी कोई अच्छी तरीके से नियम नहीं है।
प्रमोद द्विवेदी है हमारे साथ अब फोन लाइन पर। हेलो प्रमोद जी।
जी कनक जी नमस्कार, दोनों अतिथियों को भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार
महोदयों, मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि पिछले कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने सम विषम फार्मूला चालू किया था, जिससे ट्रैफिक में भी कमी आई थी और प्रदूषण में भी कमी आई थी, क्या उस फार्मूले को पुनः प्रयोग के तौर पर ही से ही लागू नहीं किया जा सकता है?
नहीं, बात ये कि ऑड इवन की जो बात कर रहे हैं, ये कोई सोल्यूशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम जब हमारे पास जब पैसे होंगे हम दो गाड़ियां खरीद लेंगे, आज एक ऑड का गाड़ी खरीद लेंगे, कार एक इवन की गाड़ी खरीद लेंगे, तो ये कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हमारा जो नियमावली है उसको हम ठीक से पालन करें। वो नियमावली अगर पालन करके आज तक तो देखें जो हमारा दिल्ली में जितना गाड़ियां है, क्या उसके लिए एडिक्वेट रास्ता है, क्या उसके लिए एडिक्वेट सिग्नलिंग व्यवस्था है, क्या रोड साफ सुथरा है, कितना गाड़ी और मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी
पब्लिक ट्रांसपोर्ट है करें कि लोग अपनी निजी वाहन को छोड़ दें, वो असेसमेंट आज तक हम लोग नहीं कर पाया है कि दिल्ली में अभी कितना गाड़ियां है, सैचुरेशन से हम लोग कितना दूर है, ताकि एक रोड मैप हम बना सकें। हम वो रोड मैप नहीं बना पा रहे हैं और वो नहीं बता पा रहे हैं कि कितने गाड़ियों में कितना स्पीड हमें देना चाहिए, कौन सा रोड में कितना स्पीड में गाड़ी चलेगी, पार्किंग रोड में कितना स्पेस यूज हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड लेवल में जब तक हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ग्राउंड लेवल में हम जब तक पता नहीं लगाएंगे कि हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है, पीपल का डिमांड क्या है, पीपल का डिसिप्लिन करने में हमें क्या करना पड़ेगा, तब तक हमें तो ये मुश्किल है कि ये कोई भी ऑड इवन फार्मूला लगा दीजिए या और दूसरा कोई लगा दे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, रोड को प्रॉपर यूज करना चाहिए, सिग्नलिंग को यूज करना चाहिए, कार पुलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन कार कभी भी आपका मास ट्रांसपोर्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाना चाहिए,
इंकरेज करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज, उसको कंफर्टेबल बनाएं, उसको सेफ बनाएं, सिक्योर बनाएं, टाइम लिमिट रखें उसका, तो अच्छा हो सकता है।
प्रदूषण से निपटने के लिए सुदृढ़ नीति बनाना पहला कदम है, लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि इस नीति को लागू किस तरह किया जा रहा है, और देश के नागरिक होने के नाते इस दिशा में सरकार से हमारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन स्वयं हमें भी जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य निभाना होगा। हमें अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा, अपनी आदतें बदलनी होंगी, और ये हमारी तरफ से प्रदूषण नियंत्रण के अभियान में योगदान होगा। अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्टूडियो में आने के लिए पर्यावरणविद डॉ सीके वार्ष्णेय और डॉ दीपांकर साहा, आप दोनों का धन्यवाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnstalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं newsonair.nrc.in। इसके साथ ही कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।